नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश की अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 6% की धीमी रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बृहस्पतिवार को यह अनुमान लगाया है। क्रिसिल का यह अनुमान अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में लगाए गए अन्य आंकलन के समान है। एजेंसी का मानना है कि अगले 5 वित्त वर्ष में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहेगी। क्रिसिल ने आगे कहा कि अगले वित्त वर्ष में कंपनियों की आय में 2 अंकीय वृद्धि हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7% रहने की संभावना जताई है। ज्यादातर विश्लेषक इसे एक महत्वाकांक्षी आंकड़ा मान रहे हैं। 7% की कुल वृद्धि दर के लिए अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष की मौजूदा तिमाही में 4.5 से अधिक दर से बढ़ना होगा। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करने के लिए अप्रैल में FPO लाएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि शेयर बाजारों के पतंजलि फूड्स के प्रवर्तकों के शेयर के लेन देन पर रोक लगाए जाने से उसके परिचालन पर असर नहीं पड़ेगा। NSE और BSE ने बाबा रामदेव की अगुवाई वाले पतंजलि समूह की कंपनी पतंजलि फूड्स के प्रवर्तकों के शेयर जब्त किए हैं। कंपनी देश की प्रमुख खाद्य तेल कंपनी है। रामदेव ने पीटीआई भाषा से बातचीत में निवेशकों को और सार्वजनिक शेयर धारकों को आश्वस्त किया कि इससे पतंजलि फूड्स लिमिटेड के कामकाज और वित्तीय प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ेगा तथा वृद्धि की गति बनी रहेगी। उन्होंने कहा, निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामदेव ने कहा कि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों के शेयरों पर पहले से ही सूचीबद्ध होने की तारीख से 1 वर्ष यानी 8 अप्रैल 2023 तक लेनदेन पर रोक है। ऐसे में शेयर बाजारों के इस कदम का PFL के कामकाज पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पतंजलि समूह PFL का परिचालन बेहतर तरीके से कर रहा है और कारोबार विस्तार वितरण लाभ तथा प्रदर्शन समेत सभी चीजों पर ध्यान दे रहा है। असम सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बृहस्पतिवार को 3.22 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई। वित्त मंत्री अजंता नियोग ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में GSDP 5.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो साल 2021-22 में 3.93 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने कहा कि 2023-24 में कुल प्राप्तियां 3,21,742.71 करोड़ रुपए और कुल व्यय 3,21,081.75 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस तरह कुल अधिशेष 660.96 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये 1,596.19 करोड़ रुपए के शुरुआती घाटे के साथ मिलकर वर्ष 2023-24 के अंत में 935.23 करोड़ रुपए के बजट घाटे की ओर ले जाएगा। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगन्ना राजेंद्र नाथ ने यहां विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। बजट में प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के लिए कुल 54,228 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें 21,435 करोड़ रुपए YSR पेंशन कानुका के लिए, 4,020 करोड़ रुपए YSR ऋतु भरोसा के लिए, 2,842 करोड़ रुपए जगन्ना विद्या देवेना और 2,200 करोड़ रुपए जगन्ना बस्ती देवेना के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट में 15,822 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए किया गया। मूल्य स्थिरता कोष के लिए 3,000 करोड़ रुपए, मानाबाड़ी नेदु के लिए 3,500 करोड़ रुपए और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 15,873 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने दीपक मोहंती को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया। उन्होंने सुप्रतिम बंदोपाध्याय की जगह ली, जिनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक मोहंती इससे पहले PFRDA के पूर्णकालिक सदस्य थे। एक सरकारी अधिसूचना में उन्हें चेयरमैन पद पर नियुक्त करने की जानकारी दी गई। एक अन्य अधिसूचना में कहा गया कि सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार ममता शंकर को पूर्णकालिक सदस्य बनाया है। स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने शेयरों के गिरने के बाद स्विस सेंट्रल बैंक से 54 अरब डॉलर तक का कर्ज लेगा। क्रेडिट स्विस ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए फैसला किया है। क्रेडिट स्विस ने कहा कि वह स्विस सेंट्रल बैंक से 50 अरब फ्रैंक तक कर्ज लेने के विकल्प का इस्तेमाल करेगा। बैंक ने कहा, ये अतिरिक्त नकदी क्रेडिट स्विस के मुख्य कारोबार और ग्राहकों का समर्थन करेगी। ग्राहकों की जरूरत के लिए बैंक को सरल और अधिक केंद्रित व्यवस्था वाला बनाया जा रहा है। इस घोषणा के बाद क्रेडिट स्विस के शेयर बृहस्पतिवार को करीब 30% चढ़ गए। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के हालिया पतन के बाद क्रेडिट स्विस के शेयरों में बुधवार को करीब 25% की गिरावट आई थी। जमीन जायदाद के कारोबार से जुड़ी कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने गुरुग्राम स्थित आवासीय परियोजना में 3 दिन के भीतर 1137 लग्जरी अपार्टमेंट बेचे हैं। प्रत्येक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपए से अधिक है और इनकी बिक्री से कंपनी को 8000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिला है। डीएलएफ ने कहा कि ये प्रमुख शहरों में महंगे फ्लैट की मजबूत मांग को दिखाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।